संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में सतत रमींगा था। सर्वचन साल ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, उसमें सुर परिणाम अधिकार चल रहा है। सतत्तरवीं गाथा की चर्चा आज करनी है। चर्चा तो बहुत हुई है गाथा की, क्योंकि रोजाना ही किसी न किसी रूप में इसकी चर्चा आ जाती है, क्योंकि ये केंद्र बिंदु वही है। उन्होंने पिछली कम से कम सन गाथा 63 से लेकर और जो यहाँ 77 तक आए हैं, वो यहाँ आने के लिए ही 63 से उन्होंने यात्रा आरंभ की थी, और जिसमें उन्होंने ये सिद्ध करके बताया कि पुण्य का उदय और पाप का उदय में कोई खास फर्क नहीं है। पुण्य के उदय में जो भोग सामग्री प्राप्त होती है और पाप के उदय में जो भोग सामग्री प्राप्ति होती है, तो पुण्य के उदय वाले जो पुण्यवान लोग हैं वे, और पाप के उदय वाले जो भाग्यहीन लोग हैं वो दोनों में ही 5 इंद्रियों के विषयों की लालसा हमें वैसी ही दिखाई देती है। अज्ञानियों में, मिथ्या दृष्टियों में तो दिखाई देती ही है, लेकिन उन्होंने जो उदाहरण दिए हैं वे उदाहरण भी अकेले अज्ञानियों के नहीं दिए। चक्रवर्ती अज्ञानी नहीं है, इंद्र अज्ञानी नहीं है, अहिमेंद्र अज्ञानी नहीं है, मतलब ज्ञानियों में भी अप्रत्याख्यानावरण के उदय में भी अप्रत्याख्यानावरण कर्म के उदय में भी इतनी तीव्रता और ऐसी देखी जाती है विषयों की का सेवन और प्रवृत्ति ऐसी देखी जाती है कि जिससे मालूम पड़ता है कि वे अनंत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। अनंत दुखी नहीं भी कहो, क्योंकि अनंत अनुबंधी का सार नहीं है। तो जब वो एक दफे सम्य दर्शन हो गया तो अनंत वाला मुद्दा तो खत्म ही हो जाता है, हर जगह से अनंत शब्द हट जाता है, क्योंकि सब चीज का अंत आ जाने वाला है, ऐसी पोजीशन आ जाती है। और आगे ये भी कहा है कि चौथे काल के जो थे, क्योंकि अहमेंद्र चौथे ही काल में होते हैं, ध्यान से सुनो, अहमेंद्र चौथे ही काल में होते हैं, पंचम काल में यहां से मर के कोई अहमेंद्र नहीं होता, और गृहस्थ वाला मन श्रावक कोई अहमेंद्र नहीं होता। जो मुनि देश को धारण कर लिया है जिन्होंने, और जो भावलिंगी मुनिराज हैं नग्न दिगंबर, वे अहमेंद्रों में पैदा होते हैं। देखो, अब सम्म दर्शन मिथ्या दर्शन वहां गौण हो गया है, क्योंकि वो नवमे गरीब एक तक अहमेंद्र हैं, और वहां द्रिवलिंगी मुनि जाता है और श्रावक नहीं जाता। पंचम गुण स्थान वाला भावलिंगी सम्य दृष्टि श्रावक वहां नहीं जाता। इसे पुण्य का ठेका धर्मात्माओं के ही है, कहां से आई बात? देखो, वो अभव्य है, अभव्य भी है, और वो भी वहां नौवें गृह विवेक तक जाता है। और बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि साहब ये तो बात बिल्कुल सही है, कपिल जैनियों के पास सत्रह की अनुकूलता ज्यादा है, हम लोगों के पास पुण्य पवित्र जीवन हमारा ज्यादा है, ऐसा ऐसा लगता है उनको। किसी न किसी तरीके से हम उस परिग्रह को, जो महापाप है वो ज्यादा है, उसको पुण्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं, अपनी अच्छाई के रूप में प्रस्तुत करते हैं, हमारी उपलब्धि के रूप में। लेकिन मैं कहता हूं ऐसा नहीं है। अभी आप अनोने के पास ही बहुत, चोरी में भी किसी को सफलता मिलती है ना, वो भी पुण्य के उदय से मिलती है। यदि पाप का उदय हो तो चोरी करके पकड़ा जाता है। जब तक ये इनकम टैक्स की चोरी कर करके आप मोटे हो रहे हो ना, तब तक वो पुण्य का योग है उसमें। जिस दिन वो पुण्य खलास हो जाएगा और पाप का उदय आएगा तो एक क्षण में ये नहीं रहेगा कहाँ से कहाँ बात पहुंच जाएगी। हैं भैया, ये बहुत पक्की और नक्की बात है, इसमें किसी सेठिया का मुंह देखने की बात नहीं है। समझे ना, किसी की भलाई बुराई की बात नहीं है ये, लेकिन अत्यंत सावधानी की बात है। तो इस गाथा तक वो ये समझाते आए कि पुण्य और पाप में कोई अंतर नहीं है। और अंतिम जो तर्क था वो ये था कि पुण्य के उदय वाले और पाप के उदय वालों में पांच इंद्रिय के भोगों की तीव्रता एक से लेवल की देखी जाती है। कभी कभी तो सम्यक ज्ञानियों की भी, सम्यक दृष्टियों की भी मिथ्या दृष्टियों से ज्यादा देखी जाती है। आप कैसी कैसी बात करते हो, तो देखो ना, है ना, वो नम्य गृह तक गए हैं तो वे विषय कैसा का सेवन करते करते गए हैं क्या है? गुरुदेव फरमाते थे कि उनने मुनि धर्म को ऐसा पाला था कि उमरी चमड़ी को छीलकर और उसके ऊपर नमक मिर्ची भुरको, समझे ना, वो जो सामने वाला जो कर रहा है उसको देखकर उनकी इतना क्रोध नहीं आए कि आंख का कोया लाल नहीं हो, बदले में मारना शुरू कर दे, ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, अपना महिमा दिखा दे, पुण्य हो है ना, कोई रिद्धि हो तो रिद्धि से उसे वो महिमा उसकी नहीं बताई कि चंद्र प्रभु की पिंडी फोड़ दी। ऐसा उपद्रव करने वालों की बात नहीं, कितना कि उन सामने पर पांडव जैसे लोगों को लोहे के गहने पहनाते हुए देखे तो उस पर भी आंख का कोया लाल नहीं हो, इतना तक गुस्सा नहीं आए। आप सुनिए, तो इतनी कसाई की मंदता उसके भी हो सकती है, समझे ना। तो वो सब इसका पुण्य पाप का खेल है संयोगों में, लेकिन वो जो वृद्धता है वो तुम्हारे पुण्य ने कहाँ कम की, तो बांधने के लोभ में कभी थोड़ी बहुत कम की होगी, लेकिन जब भोगने का मौका आया, ख्याल में आई ना, क्योंकि साहब स्वर्ग में जाएंगे ना तो फिर तो छोड़ भी नहीं सकते, फिर तो भोगना ही पड़ेगी। कहते मरेज छुटको, मरने के पहले छुटकारा मिलेगा ही नहीं, और मरना भी संभव नहीं है। आपको तो लगता है कि हम चाहें तो कम से कम आत्महत्या तो कर सकते हैं क्यों, लेकिन देवों को तो ये भी नहीं है, पक्की और नक्की बात है, अपने भी पक्की और नक्की है। अपन भी जिस क्षण अपन को मरना है उस क्षण के एक क्षण पहले नहीं मर सकते, लाख कोशिश कर लेना, एक क्षण जी नहीं सकते बाद में। आप सुनिए क्या, अपनी जो अनित्व असरण भावना है ना शुरू की, वो यही बात बताती है कि सब क्षण संगुर है, कि हर चीज प्रति समय पलटेगी, वो किसी कीमत पर तुम उसके पलटने को नहीं रोक सकते। और तुम्हें कोई के सहयोग से तुम उसे बच नहीं सकते, यही बात तो कही ना। लेकिन वो पांच इंद्रियों के विषयों की गृद्धता उस लेवल की है, अब मैं कहना नहीं चाहता ज्यादा, लेकिन प्रथमान योग में आपने ऐसे बहुत कहानी किससे पढ़े होंगे, सुने होंगे कि राजा साहब सम्मान दृष्टि थे, इच्छा दृष्टि थे, बाद में अपन निर्णय कर लेंगे, लेकिन बहुत सज्जन थे, बहुत बढ़िया थे, वो जिसकी लड़की पसंद आई उसकी छाती पे बंदूक रख दी, तो मेरे से शादी कर नहीं कर खत्म कर, आप छीन लूंगा क्यों, क्या कर, मन पांच इंद्रियों के विषयों की लोलुपता में कहीं कोई कमी नहीं है और वे पांच इंद्रिय विषयों की तरफ एक से ही गिरद्धता से दौड़ते देखे जाते हैं। इसलिए पुण्य के उदय वाले भी दुखी हैं और पाप के उदय वाले भी दुखी हैं। यहाँ तक अपन आ गए। अब इस गाथा में वो एक कह रहे हो कि पुण्य के और पाप के उदय के बाद तीन तीनों पर फैलाया उनने कि पुण्य के उदय वाले दुखी हैं और पाप के उदय वाले। तो पुण्य भाव जो बंधने होते हैं पुण्य बनते दिन से वे शुभ और अशुभ भाव, तो फिर जब पुण्य और पाप में अंतर दोनों ही दुखी हैं तो उनमें भी कोई अंतर नहीं रहा। पुण्य पाप में कोई अंतर नहीं रहा, उसके फल में कोई अंतर नहीं रहा, उसके कारण में भी कोई अंतर नहीं। तीन तरफ बात गई। दो चीजें हैं ना कि जो हमें जिन भावों से हमने पुण्य बांधा था और पुण्य बंध कर जो चीज हमें मिली तो उसको हमने उदय में आया तो भोगा। तो तीनों तरफ जाकर के देखो तो पुण्य और पाप में ये दोनों एक ही जाति के हैं। समय सार की भाषा में कहें तो वे जुड़वां बच्चे हैं, जो जुड़वां पैदा हुए। एक माँ बाप के नहीं, एक माँ के ही नहीं, एक माँ के एक साथ पैदा हुए थे। बस इतना है कि एक शूद्र के यहाँ पला और एक ब्राह्मण के यहाँ पला। पुण्य ब्राह्मण के यहाँ पला और पाप शूद्र के यहाँ पला। बस खत्म। वो इतनी बात उन्होंने देवता से कही। अब वो कहते हैं कि ये तुम नहीं मानोगे, ये बात जो हमने समझाई यहाँ तक ला करके, तो अनंत काल तक संसार में घूमोगे। मैं प्राकृत की गाथा नहीं पढ़वाता हूँ तुमसे, लेकिन हिंदी की पढ़ दो, सब लोग ध्यान से सुनना क्योंकि मैं उस पर ही अर्थ करने वाला हूँ। हाँ।
पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जो न माने बात ये संसार सागर में भ्रमे मद मोहति आछन्न वे।
आचार्य अमृतचंद्र गाथाओं की टीका लिखते हैं, दो दो तीन तीन पेज तक लिखते हैं लंबी लंबी, लेकिन इसमें दो तीन लाइन से काम चलाया। दो तीन कितनी चार पांच दो गाथा एक चार चार पांच लाइने हैं संस्कृत में। देखो आप उसका हिंदी में पढ़ता हूँ और जहां जरूरत समझूंगा तो संस्कृत की पंक्ति भी पढ़ के सुना दूंगा कि ये इसका हिंदी अनुवाद है। देखो विगत गाथाओं में प्रतिपादित वस्तु स्वरूप के अनुसार, यानी पहले हम जो बात कह आए हैं ये ऊपर बराबर एवं उक्त क्रमेण है ना, ये इस प्रकार जो पीछे से हम बात करते आए हैं वो उससे जोड़ा उनने है ना। अनुसार जब परमार्थ से माने वास्तव में, परमार्थ से माने वास्तव में शुभाशुभ उपयोग में और संसारिक सुख दुख में द्वैत नहीं ठहरता, माने संसार में सुख दुख में कोई फर्क नहीं है, दो चीजें नहीं है एक ही है, तो उनके और पुण्य और पाप में कोई अंतर नहीं है, तो फिर है ना, क्योंकि पुण्य और पाप दोनों में अनात्म धर्मत्व समान है। ये शब्द है अनात्म धर्मत्व, इसे संस्कृत में देख लो आप है ना। दूसरी पंक्ति संस्कृत की गद्य की, उभयत्र अपि अनात धर्मत्वा विशेषत्वात् है ना, अनात्म धर्म बस ये शब्द है। ये समझना है कि दोनों आत्म धर्म नहीं है, अनात्म धर्म है। समझे, माने हमारा धर्म तो आत्म धर्म है ना, अखबार की बात नहीं है। आत्मधर्म नाम के माने आत्मा का जो धर्म है जिससे हमें मोक्ष मिलने वाला है, वो धर्म ना पुण्य है ना पाप है, ना शुभ भाव है ना अशुभ भाव है, ना संसार का सुख में है और ना संसार के दुख में, दोनों में अनात्म धर्मत्व तो समान है, दोनों में अनात्म धर्मपना बराबर है, बिल्कुल एक सा, और चारों में अंतर हो। अब तुम हजार अंतर गिनाना, अंतर तो है ही, सोने का की बेड़ी गहना और लोहे की बेड़ी कैदियों को पहनाई जाती है, और सोने की बेड़ी अपने घर की सर्वप्रिय महिलाओं को पहनाई जाती है, है ना। पैरों में सोने के कड़े पहना, मोहन कोई महाभाग्यशाली होती, राजा की रानी हो, बहुत बड़ी सेठ की सेठानी, नहीं तो गले में डालने को सोना नहीं मिलता है, तो पैरों में पहनने को कहां मिलेगा, है? क्यों? वो कहते हैं हमें इससे नहीं है कि किसको, लेकिन जेल में दोनों हैं, अंडर कस्टडी दोनों हैं। और एक ऐसा होता है, बड़े नेता होते हैं तो उसके घर में ही उसे कैद कर देते हैं, मुसर्रफ जैसा हो तो उसे जेल में थोड़ी डालते हैं, उसे घर के ही चारों तरफ सैनिक लगा देते हैं और तुम अपने घर में ही कैद हो। ऐसी ये महिलाएं वो घर में ही कैद हैं, सोने की बेड़ियों में कस करके आ जाते हैं। कहते उसमें वो जेलपने में कोई फर्क नहीं है, अनात्म धर्मत्व समान है, ये बात याद रखना। क्या? दोनों अनात्म धर्मत्व समान है। इसका तात्पर्य क्या है? देखो, यह है कि पुण्य और पाप दोनों ही आत्मा के धर्म नहीं है, इसलिए आत्म धर्म के आराधकों को इन दोनों ही समान रूप के लिए दोनों ही समान रूप से अधर्म है। अब खतरनाक है, अब इन्हें अधर्म कहना, अब शुभ अशुभ भाव, अभी तो पुण्य पाप कह रहे थे और सुख दुख लोक कह रहे थे तो बर्दाश्त था अभी जी, अब इनके बंधन कैसे होता पुण्य पाप शुभ अशुभ भावों से, तो शुभ अशुभ भाव दोनों अनात्म धर्म से समान है, वे धर्म नहीं है, माने अधर्म है। अब समझ लो क्या कह रहे हैं। अब वो निकालो गाथा 69 पढ़ो। क्या बोलेंगे? 69 बोलेंगे, क्या बोलेंगे?
सब छोड़े पापा इवे गुरु यति अर्चना रे दाने उपवासादी में अरुशील में जोलीन सब प्रयोग में वह आत्मा।
सब उपयोग क्या है? देव साधगुरु की पूजा भक्ति से देव गुरु यति अर्चना देखा ना, और दान चार प्रकार के दान हो गए, और फिर उपवास आदि जिनका अपन 10-10 दिन के करवाते हैं और खूब पुरस्कार देते हैं सबको, धर्मात्मा घोषित करते हैं, इन्हीं की बात है ना। तो इन्हें कहे ये अनात्म धर्म है, लिखा इससे उससे मिलाओ वो शुभ भाव को यहाँ अधर्म लिखा, और अब संस्कृत में देखना हो तो संस्कृत में देख लो आप, मतलब मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ निकाल के आपको बताया है। मैं बिना प्रमाण के एक शब्द नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि 32 दांतों के बीच में एक जवान है, 32 पहरेदार हैं, वो बहुत कड़क हैं, वो ये जवान बहुत मुलायम है, क्यों? ये अपनी मर्यादा में नहीं रही और जरा भी बाहर निकली तो ये चबा खाएंगे इसे, क्यों? समझ गए ना? तो मैं कोई बिल्कुल मर्यादा के बाहर नहीं। एक सही घटना बताता हूं कि मैं अशोकनगर से विदिशा जाता था तो एक वकील साहब मेरे साथ थे, उनका नाम था बाबूलाल जी करैया वाले थे ना, वो बहुत फौजदारी के बड़े वकील थे वहां विदिशा के। तो हम दोनों जने एक साथ बीना स्टेशन पर, वहां 4 घंटे का मिलता था समय हमें, तो वहां पर एक टाकीज थी, तो उस टाकीज में सिनेमा देखने साथ साथ गए। बहुत 50 साल पुरानी बात है, क्यों आप कह रहे हैं? उसने कहा कि हम नहीं देख सकते हैं, बहुत दिनों से तो मुझे कोई दिखाने वाला मिला नहीं, अपने पैसे से आज तक देखा नहीं। मेरे दोस्त थे यहाँ जयपुर में एक दो, सोहनलाल जी प्रेस वाले ये और वो, तो वो लोग पहले देख के आते थे, जब उन्हें बहुत लगता था कि डॉक्टर साहब को दिखाने लायक है तो फिर मुझे ले जाते थे वो। अब वो चले गए, अब कोई दिखाने वाला नहीं है। ये कभी कभी ये बच्चे पीछे पड़ जाते हैं, खासकर बम्बई जाता हूं जब, कहने दादा आज तो चलना ही पड़ेगा, बहुत बढ़िया है, हमने देखी है हमने देखी है, तो जाता हूं। लेकिन ये तो पुरानी 50 साल पुरानी बात है। तो उसमें एक सीन था जो मुझे यहां किसको बताना है, क्या मैं वो क्या सीन था, वो अशोक कुमार कोई एक्टर था ना, वो बहुत बड़ा बैरिस्टर था, उसमें अदालत का एक सीन था, ख्याल नहीं ना, वो दो चार छोटे छोटे वकील थे, तो जब वो बहस करता था तो बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोलता था और ऐसी बार बार ठोकता था टेबल, और जज बिल्कुल चुपचाप उसको शांति से सुनता था क्या। और दूसरे वकील कोई बात आती थी जरा से बोले तो जज बड़ा वो डंडा ठोक ठोक के उन्हें रोक देता था और उसको कुछ नहीं कहता था। तो मेरे को ये बात नहीं जची, तो मैंने रस्ते में फिर उनसे पूछी कि ये वकील साहब एक ये अन्याय नहीं है, ये बड़ा वकील है, इसका मतलब ये है कि जो उसको रोक चार्जा सा चिल्ला चिल्ला के बोले, और ये जो छोटे वकील हैं तो उन्हें बोलने ही नहीं दे। बोले नहीं नहीं आप उसमें बारीकी नहीं आप समझे, समय सादगी आदगी समझते हो, ये हमसे समझनी पड़ेगी। ये क्या है, बोले ये जो है ना बैरिस्टर, जब वो जज कहता है कि अब आप बोलिए, मैंने आपको क्या कहना है इस मामले में, जब जज उसको कहता है कि बोलिए, तब वो बोलता है और कहेगा अपने उसी दम से ठोक ठोक के चिल्ला के बोलेगा, अपना कानून बताएगा। लेकिन जज बीच में इतना सा ऐसा कर देना तो एकदम चुप हो जाएगा एकदम। लेकिन ये छोटे वकील है ना, वो जज ऐसा करता रहता है और सुनते ही नहीं चुप नहीं होते, तो उन्हें वो टोकता, उन्हें नाराज क्यों होता है, अपनी मर्यादा में रहे, वो अपनी मर्यादा में रहता है, लेकिन जितना समय उसको दिया गया है उसमें तो वो अपनी तरह की जिस तरह से बात रखना है उसी तरह बात रखेगा, उसमें नहीं तो फोर्स नहीं आएगा, जज कैसे रोक सकता है। ये उसमें बारीकी है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब मुझसे कहा जाएगा कि बोलो, तब मैं वो अशोक कुमार जैसा ही बोलूंगा। एक नीति शतक में एक श्लोक आता है भर्तरी का, है ना, कि राजा यदि मेरे से नाराज हो जाए तो मेरी बोलती बंद कर सकता है, मेरी जवान खींच सकता है, लेकिन वो जैसा चाहे वैसा मुझसे नहीं मिलवा सकता। ये मेरे हाथ में चल लेते, क्या समझ में आइएगा, क्योंकि राजा कितना ही नाराज हो जाए तो मुझे गोली से उड़ा दे, वे जवान खींच ले, मेरे को बोलना बंद कर दे, लेकिन यदि जब मैं बोलूंगा तो वो मैं जो सही समझता हूं वो बोलूंगा, तो राजा अपने मन के अनुसार मेरे से नहीं बुलवा सकता, तो मेरी बोलती बंद की जा सकती है, लेकिन जब जो बोलूंगा तो जो सत्य है, जो जिनवाणी में है, जो कानून की किताब में लिखा है, वो मैं उसको ही उतनी ही दम के साथ प्रस्तुत करूंगा। समझ आ गया, मजा आ गया, कि बाहर की बात नहीं है। देखो क्या पढ़ रहे थे अपन, अनात्म धर्मत्व समान है, तात्पर्य यह है कि पुण्य और पाप दोनों ही आत्मा के धर्म नहीं हैं, इसलिए आत्म धर्म के आराधकों को दोनों ही समान रूप से अधर्म है। ये मैंने लिखा है इसमें, ये अनुवाद मैंने ही किया है, घबराना नहीं, लेकिन संस्कृत में है ना, कोई माई का लाल बता के इसका ये अर्थ नहीं है, आप समझे, संस्कृत से पढ़े से बड़ा विद्वान को ले आओ और उसे पढ़वाओ कि मैंने अनुवाद में कोई गड़बड़ की है क्या, अक्षर का अनुवाद है कि नहीं, है ना। ऐसा होने पर भी जो क्या 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 कैसा होने पर भी संजीव, कि ये धर्म नहीं है, और जरा कहो तो अधर्म है, क्या 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 है अधर्म, आप लोगों की समझ में आ रहा है क्या है, देव गुरु यति अर्चन उपवासादि में
हर शील में जो लीन शुभ उपयोग में वह आत्मा।
वहां शुरू किया था 69 गाथा से और जो 77वीं गाथा पर आकर के ये निष्कर्ष निकाला है उन्होंने। अब कहते हैं जो ऐसा होने पर भी, अब इतनी बात तो मैं समझा दी हमने इतनी गाथाओं में खूब ठोक ठोक के पीट पीट के, फिर जो जीव उन दोनों में स्वर्ण और लोहे की बेड़ी की भांति अंतर मानता हुआ, कहो ना फर्क है लोहे की है सोने की सोने की, क्या बात करते हैं, है ना। अहिमिंद्रादि संपदाओं के कारणभूत, वो पुण्य अहिमिंद्रादि संपदाओं के कारणभूत, अहिमिंद्र में तो अब ये मुनिराज की बात हो गई ना, घबराना नहीं, क्योंकि ग्रस्त अहिमिंद्र नहीं होता, शास्त्र में लिखा है। मेरे दादा वो ख्याल में आते ना बात क्या नहीं आती है। इंद्रादि अहिमिंद्रादि संपदाओं के कारणभूत धर्मानुराग पर अत्यंत निर्भर रूप से अवलंबित हैं। वो कह रहे हैं कि जिससे अहिमिंद्र पद मिले ऐसा पुण्य किसके होगा, ऐसे स्वभाव किसके होंगे, समझ गए ना, कि अब उस पर अवलंबित हैं बस। तो मैं तो भाई छोटा मोटा पुण्य नहीं चाहता हूं, मैं तो बिल्कुल अहिमिंद सीधा सर्वा सिद्धि में कि नीचे बात नहीं करता हूं, नहीं अपन सब लगा रहे पंचम काल में डॉक्टर साहब कौन से सुरक्षा तक जाते हैं, क्यों मुझे डिसीजन करना है कि मुझे किसमें जाना, तो दूसरे तक बस दूसरे तक। मैंने कहा ये क्यों नहीं पूछता है कि पंचम काल में कौन से नरक तक जाते हैं, लक्षण तो नरक में जाने जैसे है तो सुरक्षा पूछता है क्या मैं कहता हूं कि हमें नहीं जाना कहीं ना नरक में ना स्वर्ग में, हमें तो अपने आत्मा में जाना, कि नहीं जब तक मोक्ष नहीं होगा दो चार भव में तब तक तो तुम्हें कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा, इस भव से सीधे मोक्ष में नहीं जा सकते हो। तो ये जाना जहां क्रमबद्ध परिवार के अनुसार जहां केव जी के ज्ञान में देखा होगा, जैसी हमारी परिणति हुई होगी उसके अनुसार हम जहां जाएंगे तो हम बिना मीन वेस्ट किए स्वीकार कर लेंगे, कोई नो ऑब्जेक्शन कि भाई ये पसंद नहीं ये दिला दो, ये क्या है जो अपन कह नहीं नहीं मेरे दूसरे नहीं तीसरे में मिलना चाहिए, मैं पहले समय जाने को तैयार हूं लेकिन स्वधर्म होना चाहिए, क्यों वो ईशान नहीं चलेगा, मैं सोलह में सोलह का इंद्र भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो कोने की कुर्सी पर बैठना पड़ेगा, ये तो बीज की कुर्सी पर बैठूंगा ना, अरे ये तो आगे पैदल कल्याण को तो होता सोलह मार सड़क क्यों कि नहीं जहां जाएंगे वहां चले। मैंने अपनी किताब में लिखा है समाज मैन की किताब में ये बात लिखी है कि मेरे से पूछा भाई जी सच्ची घटना, क्योंकि जहां जाए चले जाएंगे, हमें क्या क्या ऑब्जेक्शन है, जितने दिन काटना होंगे कट जाएंगे, लेकिन आप क्या चाहते हो। मैंने क्यों पूछते हो, इसको जैन शास्त्र में निदान कहा गया है, तो निदान बंद करने के लिए मेरे से कह रहे हो, अबे जी समझ नहीं बात करनी आई क्या कह रहा हूं, कि हमने जो पुण्य किया है उसके बदले में मैं नारायण हो जाऊं, मैं चक्रवर्ती हो जाऊं, मैं पांचवें स्वर्ग में चला जाऊं, मैं यहां चला जाऊं, मैं पत्थर हो जाऊं, मैं पहले ही नरक में जाऊं, ये कुछ भी ये सब निदान नाम का आर्ध ध्यान है क्या? तो तुम मुझे निदान बंद करने के लिए क्यों कह रहे हैं, सोचो सोचो कि स्वर्ग में जाने की भी नहीं सोचे, मोक्ष में जाने की क्यों नहीं सोच सकते, तो पंचम काल में जाते नहीं, भाई को पंचम काल का बहाना लेते हो। सुनो मेरी बात, एक गांव में एक लड़का चौथी क्लास पास था और फिर गोवर्धन चौका मिलने का काम करने लग गया था। मैंने कहा बेटा तुमने पढ़ाई आगे क्यों नहीं की? क्या हमारे गांव में कॉलेज है ही नहीं, हम क्या करें? मैंने कहां तक है स्कूल? कि दसवीं तक। तुम कौन सी क्लास पास हो? कि चौथी। तो तुम दसवीं पास हो जाते तब ये शिकायत कर सकते थे, तुम चौथी तक पढ़े और हमारे गांव में कोई स्कूल नहीं, हमारे गांव में स्कूल नहीं है, इसका क्या मतलब है बोलिए? तुम अपनी क्षमता के अनुसार जहां पढ़ाई कर, तो तुम अपनी अयोग्यता से नहीं पढ़े, अपनी अरुचि से नहीं पढ़े, इसके अपराधी तुम 100% तुम ही हो, गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट उनका अपराधी है कि जो दसवीं पास हो गए। तुमको क्या करना? तुम जितना मोक्ष मार्ग इस पंचम काल में चला जा सकता है उतना तुमने चल लिया कि नहीं? अभी कदम तो एक नहीं रखा मोक्ष मार्ग में और हम पंचम काल में खुला नहीं, पंचम काल में खुला नहीं, ऐसी मूर्खता की बात नहीं। पंचम काल में सातवां गुण स्थान तक होता है, तुम तो अभी बादशाही में विराजमान हो, वहां से निकलने की नहीं सोचते हो। पहली क्लास से मैं स्कूल ही नहीं जाना चाहते हो है? तो तुम क्या कहने का अधिकार है? पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, वहां तक तो पहुंच जाओ, जहां तक कुंद कुंद पहुंचे वहां तक तो पहुंच जाओ। अरे इस भव में कितना सा छोटा सा भव है, गिनती पे गिनने लायक दिन है, इसमें यदि तुमने इतना रास्ता पार कर लिया तो समझ लो जग जीत लिया। तो तुम तो मोक्ष मार्ग चाहते ही नहीं हो, मोक्ष दिक्कत तो ये है, अभी हमें नहीं बनना, क्यों पंचम काल में जाते नहीं? अच्छा शास्त्र पढ़ा तुमने, पंचम काल में सातवें गुण स्थान तक तो जाते हो, तो अगर हाँ यही तो पंडित जी हम कहते, तुम क्यों नहीं जाते हो आगे? बहुत पुरानी बात है, कम से कम कितने साल हो गए हो जाता जब आप भीलवाड़ा में थे, कब की बात है दादा? जब दादा भीलवाड़ा में सर्विस करते थे, मैं पारोली में जन्म स्कूल में हेडमास्टर था, तो पर्यूषण में मैं भीलवाड़ा गया था प्रवचन करने के लिए, वहीं दादा बड़े दादा रहते थे, वो तो वहां प्रवचन कर रहा था, तो मैं वो छड़ा लग यही पंक्तियां पढ़ा रहा था कि ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, परमामित जन्म जरा मृत्यु, और धन समाज रज गाज बाज तो काज न आवे, और ज्ञान आपको रूप भयो नहीं। तो एक मेरे दादाजी के बराबर थे, नाम भी मैं जानता हूं उनके, क्यों बताया ना तुम्हें तो कई दफे भीड़ वालों को मालूम है, हद हो गई, सेठियों की निंदा और पंडितों की प्रशंसा, एक ही बात है, दूसरी कोई बात ही नहीं है। ये क्यों कहा? मैंने क्या किया? क्या क्या धन की निंदा, धन समाज के साथ काज न आवे, और ज्ञान आपको रूप भयो। अच्छा मैंने कहा सेठ जी ये धन की निंदा है, धन वालों की नहीं, ये ज्ञान की प्रशंसा है, पंडितों की नहीं। और आप क्या समझते हो क्या कोई पंडित सेठिया नहीं हो सकता? क्या कोई सेठिया पंडित नहीं हो सकता? कोई अपने ठेकेदारी है, हो सकता है ना? तो आप ऐसा क्यों मानते हो पंडित माने मैं और सेठिया माने तुम, ऐसा क्यों मानते हो? तो जो मैंने ऐसी कहा तो वो मेरे से बोले हाँ चुप रहो आगे बढ़ो, तुम जैसे मैंने बहुत देखे, तुम्हारे बराबर तो मेरे पोते खेलते हैं। कोई सच्ची बात थी, पोते मेरे, उनके पोते मेरे बराबर थे, आज भी हैं, इसलिए मैं नाम नहीं लेता हूं क्योंकि फिर वही झंझट खराब हो जाए। सच्ची सही घटना है। और मैं नई उम्र वाला, मेरी शादी नहीं हुई थी, 18 वर्ष का होऊंगा कि 17 का, वैसे 18 का, दादा की शादी हो गई थी, भाभी और दादा दोनों वहां थे, मैं बारौली से आया था। तो वो बोले कि अब मैं इतना अनुभवी हूं। मैंने कहा सेठ जी विषय कसाय के अनुभवी हो गए। अनुभव किसे कहते हैं ये जानते हो? अनुभव किसे कहते हैं ये जानते हो? और मैंने बनारसी दास का वो दोहा सुनाया, कौन सा? वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। अनुभव चिंता मणि रतन अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष का अनुभव मोक्ष स्वरूप। तो तिल मिला गए, इतना हल्ला गुल्ला हुआ कि प्रश्न बंद हो गया, मेरे भी रोना आ गया, मेरी भी आंख में आंसू आ गए, समाज में डिस्टर्बेंस बहुत हो गया, मैं चला गया उठ के भी, मैंने करना नहीं करना प्रवचन। फिर सब समाज ने मनाया, रहा मैं, फिर प्रवचन किए। समझ रहे ना? तो ये क्या है अनुभव किसे कहते, क्या है पता कुछ है नहीं, और अकेले ऐसे बढ़ते जाने से कोई अनुभवी हो जाते हैं जिस क्षेत्र का जो है। मैं कहा डॉक्टर को बुलाओ तुम दिखाने के लिए, और तुम 60 वर्ष के हो, डॉक्टर हो गए 20 वर्ष का, तो वो जो बताएगा वो दवाई खाओगे कि तुम अपना अनुभव बताओगे उसे? बोलो किसकी किसकी चलेगी? मैं इसका विशेषज्ञ हूं। मुझे उस वक्त बहुत अभिमान था, मुझे सब तत्वासु ये पहले से अंतिम सूत्र था, उल्टा भी बोल सकता था, सबका तार सब तैयार था, राजभार तक मैं सबको पढ़ा सकता था, मैं टॉपर्स था, और मेरे को मैं बहुत अच्छी तरह से जनरेशन के शास्त्रों को मैंने पढ़ा था। पारोली में रहा था ना, तो एक लाइब्रेरी में जाता था, तो मैंने पहली किताब से लेकर के उसमें 150-200 किताबें थी, मैंने सब पढ़ डाली, एक अक्षर नहीं छोड़ा पूरी किताब। फिर मैं भीलवाड़ा गया, वहां शेर जी थे ना, वो अजमेरा में क्या नाम था उनका, कस्तूरचंद जी अजमेरा। मैंने कहा कि बाबूजी अब तो मेरा मन नहीं लगता हूं, मैं नहीं जाऊंगा वहां। बोले क्यों क्यों, क्या बात है क्या बात है? मैं कुछ पढ़ने लिखने को तो मिलता ही नहीं है वहां। बोले देखो इतने शास्त्र भंडार रखा है उनके, हम भरा था फूट का छात्र भंडार था कस्तूरचंद जी अजमेरा, तो रखा था, इनमें से जो किताबें आपको लेना हो ले जाओ। मैंने क्या जवाब दिया था बताओ? मैंने कहा इनकी बात कर रहे हैं आप, इन किताबों को पढ़ पढ़ के तो मेरा दिमाग सड़ गया है, अब ये नहीं पढ़ना मेरे को। क्या ये माने राजवार्तिक, ये सब ये जैन शास्त्र इतने तैयार थे मेरे को। मैं जब मुझे अब नहीं पढ़ना, मेरे को कुछ उपन्यास उपन्यास जैसे मैंने लिखी ना जो किताबें कहानियां उस वक्त वो लिखा दे कौन सा को पश्चाताप वगैरह, ये उस समय की बात है। तो एक एक चीज है, आप पढ़ के अंदर देखो देखो दोनों में अनात्म धर्मत्व समान है, ऐसा होने पर भी जो जीव उन दोनों में सुवर्ण और लोहे की बेड़ी की भांति अंतर मानता हुआ अहिमिंद्रादि संपदाओं के कारण भूत धर्मानुराग पर अत्यंत निर्भर रूप से अवलंबित है, बस वो ही चाहिए, अत्यंत निर्भर हो गया उसको कहते ना, निर्भर समझते हैं आप उसके वैसे वो, बस मैं तो इस पर ही निर्भर हूं, बस आप जो कर दोगे सही काम है, मेरा तो सब और कोई नहीं है, मैं अकेले आप पे ही निर्भर हूं, बस जैसे तो वो ही चाहिए। कर्मोपाधि से विकृत चित्त वाले उस जीव ने, क्या उसने कौन सा पाप किया, किसने? जिसने ये सोचा कि मैं तो सर्वार सिद्धि में जाऊंगा, फिर सर्वार सिद्धि से आकर के मनुष्य होऊंगा, फिर मोक्ष जाऊंगा, एक दफे सर्वार सिद्धि का मजा भी तो चख जाऊं। तो उसने क्या अपराध किया है? चलेगा शुद्धोपयोग शक्ति का तिरस्कार किया है, उसमें उसके अंदर शुद्धोपयोग नहीं है, लेकिन शुद्धोपयोग की शक्ति है, वो चाहे तो शुद्धोपयोग इस पंचम काल में भी कर सकता है, तो उस शुद्धोपयोग की शक्ति का उसने तिरस्कार किया है, ये महाभयंकर पाप है जिसके कारण वो अनंत काल तक संसार में घूमेगा। अब हमको ये पाप ही नहीं दिखता अभी, ये पाप, ये पाप हमें तो दुनिया में हिंसा झूठ चोरी किसी परिग्रह ये पाप दिखते, इसमें क्या दम है इनमें? ये सारे पाप ऐसे हैं छोटे मोटे कि जिनसे 100-200 आदमियों को मार डालो तो 2 सागर नरक में ले जाना, निकला कि आ जाओगे आराम से, ज्यादा लंबी सजा थोड़ी मिलेगी, अनंत काल की नहीं मिलेगी। लेकिन ये ऐसी बीमारी सिद्धोपयोग का अपमान कि अनंत काल तक लिखा संसार में घूमना पड़ेगा, लिखा ना। देखो सिद्धोपयोग शक्ति का तिरस्कार किया है इसलिए यह जीव संसार पर्यंत जब तक संसार है तब तक शारीरिक दुख का ही अनुभव करता है, जिसे शारीरिक सुख भी कहता है वो शारीरिक दुख। ये देखो संस्कृत अमृतचंद की शब्द हैं, 1000 वर्ष पहले लिखे गए, कुंद कुंद की गाथा है। विचार करो गंभीरता, अभी मैं एक कुछ हिस्सा छोड़ता हूं, मर्म की बात आ गई है इसे पढ़ लेना, तुम्हारे पास तो है ही, और कोई को प्रश्न कुछ हो तो मेरे से पूछना, मैं उसको जवाब दे दूंगा। अब मैं नीचे, अब नीचे से तीसरी लाइन लो, हाँ पहले ये लो, फिर स्वयं तीसरा पैरा, फिर स्वयं प्रश्न उठाकर, लिखा ना, फिर स्वयं प्रश्न उठाकर इस बात का स्पष्टीकरण करते हैं कि निश्चय नैसे पाप के समान पुण्य भी स्वभाव से पतित करने वाला होने के कारण पाप ही है। ठीक है, मिल गया सबको। इस कारण एक अपेक्षा से यह अधिकार पापाधिकार ही है, जैसे नाचार्य ने लिखा, लिखा यहां पापाधिकार समाप्त होता है, ऐसा लिखा। इसका अधिकार ने क्या रखा था? सर्वोपयोग अधिकार। इसे जैसे नाचारी, जिसको लोग कहते हैं कि जैसे नाचारी जरा सरल हैं, सत्य हैं, और हम लोग जैसे नाचारी को नहीं मानते हैं, ऐसा आरोप हम पर लगाया जाता है। तो जैसे इनको देखो ना क्या लिख रहा है, ये नहीं किया तो ये पाप ही किया था ना, पुण्य भी पाप जैसा ही है। योग सार में ये गाथा आती है, क्या बोल भैया, कौन बोलेगा?
कोई बिरला बुध कहे कि पुण्य भी तो पाप है,
एक बार और बोलो, आधा बोलो।
हर पाप को सारा जगत ही बोलता यह पाप है, पर कोई बिरला बुध कहे कि पुण्य भी तो पाप है। 71 नंबर गाथा है योगसार की,
योगसार की 71 नंबर गाथा। अभी मैं एक सार पे अनुशीलन लिख रहा हूं, 9 गाथाओं का लिख चुका हूं 30 पे। ये कौन सी गाथा नंबर बताई? 71। अभी 71 तक नहीं पहुंचा है, लेकिन मैं तो पता तो सब है ना कहां क्या लिखा है। हाँ, पद्यानुवाद मैंने किया है इसका, वो कहते पाप है। देखो क्या करना, क्या लिखा, इन्हें पापाधिकार ही है। जैसे तो आचार्य अमृतचंद और जयसेन दोनों ने इस गाथा का अर्थ समान ही किया है, दोनों ही एक स्वर से यह स्वीकार कर रहे हैं कि जो अज्ञानी जीव पुण्य पाप में अंतर नहीं है, इस बात को स्वीकार नहीं करता, वह संसारी प्राणी अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करता है। इसमें जयसेन और अमृतचंद में कोई फर्क नहीं है, ये बात दोनों ने इस गाथा में लिखी है। इसलिए एक कहकर कि अमृतचंद ख्याल में है ना, बहुत चला था एक समय, कि जयसेन ने मां जयसेन एक पार्टी के हो गए थे और अमृतन दूसरी पार्टी के हो गए थे, हो गए थे। पंडित जी तुम्हारे समय सार में ये लिखा है और हमारे गोमर सार में ये लिखा है। तो मैंने कहा कि हमारा समय सार और तुम्हारा गोमर सार कैसे, तुम हमें समय सार देने को तैयार हो, हमें स्वीकार है, लेकिन तुम गोमर सार हमसे छीनना चाहो तो ये नहीं बनेगा। हमारा तो समय सार भी है और गोमर सार भी है। क्यों? क्योंकि गोमर सार की टीका हमारे पंडित टोडर मल ने लिखी है, जिसके दिन के में संस्था में हम रहते हैं। क्यों? तुमने नहीं लिखी किसी ने, तुम्हारा कैसे हो गया गोमर सार? और हम समय सार हमारे जयचंद सावधान ने भी जयपुर के पंडितों ने लिखी है भाई, समझो जिनकी गादी पे हम बैठे हैं उनने लिखी है, हमारे तुम्हारे नहीं हो सकते हैं। कैसे तुम्हारा जी हमारा ऐसा नहीं कर सकता। हमारी जो सारी जिनवाणी हमारी है, हम जयसेन भी हमारे हैं और अमृतेंद्र भी हमारे, हमने दोनों का दिया जान। जयसेन की जो जो प्रमुख बातें आई हैं वो सब आ गई हैं इसमें। फिर आचार्य देखो, फिर भी आचार्य जयसेन को ऐसा लगा है, तो दोनों ने एक निष्कर्ष निकाला है, लेकिन फिर भी क्या लिखते हैं, लगा कि गाथा विषय का विशेष स्पष्टीकरण की अपेक्षा रखती है। यही कारण है कि उन्होंने निश्चय व्यवहार से इसको उन्होंने व्याख्या की है। मैंने छोड़ा है ना जो हिस्सा, वो उन्होंने निश्चय व्यवहार से घटित किया है, वो ही छोड़ा है। तुम्हें समझना हो तो इस पर पढ़ लेना, आ जाएगा समझ में, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, अब इसके बाद नीचे से तीसरी लाइन, यह अपार घोर संसार में परिभ्रमण करेगा, लिखा ना कि इतनी बड़ी सजा, यह अपार घोर संसार में परिभ्रमण करेगा, कि इसका अर्थ क्या है? कौन जो पुण्य पाप में अंतर नहीं मानेगा? सोचो कौन सा अपराध और क्या सजा, इन दोनों पर विचार कर रहे हैं। यह पद भी विशेष स्पष्टीकरण की अपेक्षा रखता है। अपार घोर संसार का अर्थ अनंत काल तक भयंकर संसार में परिभ्रमण करना भी किया जा सकता है, ये भी इसका अर्थ कर सकते हैं। तो भी आशय यही है कि जब तक वह अपनी इस भूल को सुधारेगा नहीं, तब तक संसार में रुलेगा। क्या किया, अंतर क्या डाला मालूम, कुछ फर्क है? मैंने थोड़ा सरल किया है, हमने चंद्राचार्य की और जयसेनाचार्य की कठोरता को कम किया है। क्या कम किया है? दीदी जी कि वे कह रहे अनंत कर संसार तक रुलेगा, और मैं कह रहा कि जब तक ये भूल नहीं सुधारेंगे तब तक रुलेंगे। भूल कल ही सुधार ले तो कल ही निपट जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये मैंने अपनी तरफ से सुविधा दी हो, वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है, भले ही उनने उल्लेख नहीं किया। क्या एक सजा का निकल जा बस, कब के लिए, मैं तेरी सारी जिंदगी मोहनी देखना चाहता हूं। एक ऐसा कहे भाई निकल जा, मैं तेरा मोहनी देखना चाहता हूं, जब तक तू अपनी गलती नहीं सुधारेगा तब तक मुझे मोह मत दिखाना, अगर जिंदगी भर मत दिखाना। अंतर समझ में आया क्या? नहीं। और कभी ऐसा आशय होता है अंदर से पिताजी का कि एक गलती सुधार ले तो वो अपना ले सारी संपत्ति दे देगा। फिर कहता है ऐसा ही है कि तुम्हें सकल में दिखाना जिंदगी भर, हर जबर के तब तू, जैसे मैं समझ लूंगी तू है ही नहीं मेरा, कहता है ऐसा ही है। और मेरा जैसा पंडित उसका अर्थ बताता है कि बेटा घबरा मत, तू गलती सुधार ले फिर हम देख लेंगे कैसे अकड़े रहते हैं जो, फिर कैसे तेरे को अनंत काल तक निकालते हैं, फिर कैसे तेरे को सारे पैसा को मैंने कह देते कि नहीं देंगे, लेकिन तुम गलती सुधार, क्योंकि मैं गलती नहीं सुधारूंगा कैसे होगा, मेरा भी अधिकार है, मैं अदालत में जाऊंगा तो फिर तुम साथ तू निपटे तो बाप निपटे हो तू निपट, क्यों क्यों फिर तू निपट जैसा है लेकिन यदि तुम भूल सुधारने को तैयार हो तो मैंने इतनी सरलता की है इसमें देखो। तथापि यही आशय यही है कि जब तक वह अपनी इस भूल को नहीं सुधारेगा तब तक संसार में रुलेगा। भूल सुधार लेने पर वह अल्पकाल में भी मुक्त जा सकता है। यही कारण है कि आचार्य जयसेन इसमें अभव्य की अपेक्षा लगा देते हैं। वो क्योंकि कोई ऐसा ना मान ले तो कहते अभव्य, ऐसा अभव्य कौन जो पुण्य पाप में अंतर मानता है, ऐसा अभव्य अनंत काल तक संसार में रुलेगा। ऐसा अभव्य लगाकर वो उसकी अनंत काल तक की बात को पक्की की उनने। और मैं कहता हूं अभव्य की हम बातें ही नहीं सुना रहे, हम तो भव्यों को सुना रहे। तो जब तक गलती सुधार लेगा तो काम हो जाएगा उसका। वे कहते हैं कि पुण्य और पाप के समान नहीं मानने वाला अभव्य जीव अनंत काल तक घोर संसार में परिभ्रमण करेगा। अब लिखाना उक्त संपूर्ण कथन का स्पष्ट अर्थ यह है। अब ये सब मैंने लिखा है, पढ़ना भी घर पर शांति से, ख्याल में आई ना। मैंने अभी यहां नहीं पढ़ रहा हूं, बहुत कुछ मैंने कह दिया है। देखो अब निकोन विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है, आज इस गाथा को खत्म कर रहा हूं, कल मैं अगली गाथा लेना चाहता हूं, इसलिए दो पांच मिनट आधे के पीछे हो जाए तो घबराना नहीं। विशेष ध्यान देने की बात यह है कि यहां टीका में ऐसा लिखा है कि पुण्य पाप में अहंकारिक अंतर मानता है। अब ये अहंकारिक अंतर क्या, एक एक शब्द पर मैंने विचार किया है। अहंकारिक अंतर मानता है, अब उनको तो अहंकार माने घमंड, अहंकार माने घमंड ही मानते हैं ना। अहंकार माने घमंड नहीं है, तो कौन सा है अहम, ये मैं हूं, उसमें अपनापन स्थापित करना उसका नाम अहंकार है, और मेरापन स्थापित करना उसका नाम ममकार है। हमें आत्मा में अहंकार के अहंकार होना चाहिए ना, और जो पुण्य पाप में अहंकार स्थापित करता है, अहंकार माने उसे अपना मानता है। देखो मदमोह से आच्छन्न वह अज्ञानी अनंत संसार में भ्रमण करता है। अहंकार का अंतर का भाव यह है कि पुण्योदय से प्राप्त सामग्री में अहंकार माने एकत्व, ममकार माने ममत्व करता है। वह अहंकार एक अंतर मानने वाला अज्ञानी है और वह अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करेगा। अभी ये बातें लिखी तो सब हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं तो आपका ध्यान जा रहा है, नहीं तो आप बस वैसे ही पढ़ जाएंगे और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या कहा क्या लिखा, क्योंकि आप इतना ही गहराई से उपयोग लगाएंगे तो समझ में आएगा। अब मैं कभी अनंत काल तक तो पढ़ाता बताता नहीं रहूंगा, आखिर तो कुछ लोगों को तो अपने आप पढ़ के ही अर्थ निकालना पड़ेगा ना सबका। हर गाथा हर बाधा तो नहीं बता सकूंगा ना मैं, लेकिन आप इससे वो विधि सीख सकते हैं, जान सकते हैं कि कैसे निकाला जाता है अर्थ। यहां एक प्रश्न संभव है क्या, कि पुण्य पाप में अंतर मानने वाले छोटे से अपराध की इतनी बड़ी सजा कि वह अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करे, क्या है देखो तो क्या, बस पुण्य पाप में अंतर मान लिया। और पुण्य पाप में अंतर है भी, एक से सूरज मिलता है एक से नरक जाता है। अब हमने इतनी बात मान ली और इसकी सजा कितनी कि हम अनंत काल तक संसार में घूमेंगे। देखा यह ककड़ी के चोर को कटार मारने जैसा अन्याय नहीं है। ये सजा जो आचार्य ने बताई है, एक कटड़ी ककड़ी के चोर को कटार मानना है कि भैया ये ककड़ी का चोर नहीं है, ये ऐसा मानने वाला ककड़ी का चोर नहीं है। एक राजा के पलंग के नीचे सोने के लोटे में पानी भर के रखा जाता था कि राजा साहब को रात में प्यास लगेगी तो वे लोटे से पानी पिलाकर पी लें, गिलास और लोटा वहां रख दिया जाता था। एक चोर ने हिम्मत करके वो राजा का लोटा और वो गिलास चुरा लिया, समझे ना। अब वो पकड़ा गया तो राजा की अदालत में आया तो राजा ने उसे फांसी की सजा दी। तो सब मिनिस्टर लोग ने साहब गजब हो गया, एक गिलास की चोरी, एक लोटा की चोरी और इसकी इतनी बड़ी सजा, फांसी पे चढ़ा दिया, ये ठीक नहीं साहब। राजा ने कहा कि इसकी नहीं है, एक लोटा और एक गिलास की चोरी की सजा नहीं है ये, तो काय की है। कि राजा के पलंग के नीचे से इतने पहरे के बीच में, सात पहरों के बीच में पार करके, और राजा के न के चढ़ाए, राजा साहब भी तलवार नंगी लेकर के बगल में सोते हैं, यदि कोई खतरा आए तो उठा करके जो मुसीबत खत्म कर सकते हैं, कितना डर है विनय बाबू। फिर भी उसने हिम्मत करी तो कितना बड़ा चोर है, देश का कौन व्यक्ति इससे सुरक्षित है, समझ में आई ना। ये तो जहां चाहे जहां से चढ़ा लाएगा, ये तो कहीं भी जा सकता है, देश का एक फुट जगह भी ऐसी नहीं है जो इससे सुरक्षित हो, इसलिए इसे फांसी है, समझ आए ना। तो ये ककड़ी का चोर नहीं है जिससे अनंत काल तक संसार में रहना पड़े और संसार से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, वो अपराध कोई छोटा होगा। कौन सा अपराध? उन पाप में अंतर नहीं है जो न माने बात,
संसार सागर में भ्रम मद मोह सियाचन।
अब एक पेज और बचा है, वो आपको घर पे ही पढ़ना पड़ेगा, मैं तो कल 78वीं गाथा पढ़ूंगा।
सहजानंदी सुत स्वरूपी